आज हम अपनी सीरीज की 7th एपिसोड कर रहे हैं। मैं अपनी बेटी फातिमा के साथ तख्त पे बैठी थी, बातें कर रही थी और पुराने दिनों को याद कर रही थी। अच्छा फातिमा, बासित भाई का कुछ पता है? बासित भाई फातिमा के सुसर मेरे सके भाई थे। उनकी वफात बहुत जल्दी हो गई थी। वो बोली, हाँ वो मिले थे। और जानती हैं वो क्या कह रहे थे? मैंने तजस्सुस से पूछा, हाँ बताओ। कहने लगी, आपने जो उनके मरने के बाद उनकी उन नाम का उनके सवाब के लिए जो पानी का नल लगवाया था, उसने उनको बहुत फायदा पहुंचाया। वो आपसे बहुत खुश थे। कह रहे थे जब तक वो नल चलता रहा, लोग उससे पानी पीते रहे, तो उनको उनकी कब्र में भी उसका फायदा हुआ और हशर में भी उनको सवाब मिलता ही रहा। मुझे ये बात सुन के बहुत खुशी हुई। मैंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया। फातिमा कहने लगी, अम्मी आपको ये पता है, वो जो हमारी हमसाई हुआ करती थी, उनको मैंने देखा था हशर के मैदान में। मैंने कहा, कौन सी? कहने लगी, वो ही जो बहुत गालियां देती थी, जिनकी जुबान उनके काबू में नहीं थी। उनको हशर के मैदान में कहा जा रहा था कि फलां को तुम ये कहती थी, बताओ मैंने उसको क्या ऐसा बनाया था? फलां को तुमने ऐसा कहा था, बताओ क्या मैंने उसको ये बनाया था? किसी को किसी जानवर से तशबीह देती थी, किसी को हराम की औलाद कहती थी, किसी को कुछ। उनकी तो ऐसी पूछ किछ हो रही थी, बड़ी मुश्किल में थी वो, और उनको कोई जवाब भी नहीं आ रहा था। मुझे याद आ गया, वाकई वो दुनिया में बड़ी बेदरेख जुबान चलाती थी। हमारे तो चूंकि पड़ोस में रहती थी तो हम सुनते रहते थे। लोगों के सामने बेशक बहुत मीठी बन जाती थी, मगर जब वो चले जाते थे तो उनकी नकलें उतारती थी। किसी को कुछ कहती थी, किसी को कुछ, फलां तो ऐसा है, फलां तो ऐसा है। अपने बच्चों को, नौकरों को गालियां देती थी। वो अपनी जुबान की वजह से इस कदर बुरी तरह फंसी हुई थी। हाँ अम्मी, बाद में मुझे नहीं पता कि उनका क्या फैसला हुआ, मगर जब तक मैंने उनको देखा था तब तक तो वो इस कदर परेशान थी, इतनी खौफजदा थी, चेहरे पे एक रंग आता था और एक जाता था, हवाइयां उड़ी हुई थी उनकी। मैंने कहा, हाँ दुनिया में कोई उनको कुछ भी तो नहीं कहता था कि हमें क्या पड़ी है इनसे उलझने की, अगर इंसान सोचता है कि शायद दुनिया में मुझे कोई टोकता नहीं, कोई मना नहीं करता, तो आखिरत में भी इसी तरह आसानी से छूट जाऊंगा। दुनिया में अगर कोई कुछ कहने से मुझे डरता है तो शायद आखिरत में भी मुझे कुछ नहीं खाया जाएगा। हालांकि यहां तो सब रिकॉर्ड निकाल के बाहर ला के रख दिए जाते हैं, यहां तो सब के पिछले कच्चे छट्टे खुल जाते हैं। मैं सोच रही थी जुबान इंसान को कितनी मुसीबत में डाल सकती है। कभी सोचा भी नहीं था कि इससे निकले हुए बोल यहां तक पहुंच जाएंगे, यहां तक हॉन्ट करेंगे, यहां तक मुसीबत बन जाएंगे। हम तो दुनिया में कई बातें कह के भी भूल जाया करते थे, याद ही नहीं होती थी किसको क्या कहा, और कह के चलते बनते थे, सोचते भी ना थे कि इसकी मुझसे पूछ हो सकती है। और अगर मुझसे पूछ लिया गया कि फलां को तुमने ऐसा क्यों कहा था, फलां दिन में फलां के साथ तुमने ऐसी बात क्यों की थी, फलां को गाली क्यों दी थी, तो इंसान के पास कोई जवाब बन नहीं पाएगा। फातिमा खड़ी हो गई, अम्मा मैं चलती हूं अब। मैं जैसे दुनिया में उसको कहा करती थी, उसी तरह मैंने कहा, बेटा कुछ खाना ले जाओ साथ। वो हंस दी, अम्मा आप यहां पे भी मुझे ऐसे कह रही हैं? और मेरे सर पे बोसा देते हुए बोली, मैंने थोड़ा ही यहाँ पे कुछ पकाना है, मेरे अपने महल में इतना कुछ है कि अभी तक मैंने तो सब कुछ देखा भी नहीं। इतने खाने हैं जिनको अभी तक चखा भी नहीं। मैंने कहा, हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है। वो बोली, मैं असाबुल यमीन में से हूं तो मुझे तो दो जन्नतें मिली हुई हैं, एक सारी की सारी सोने की बनी हुई है, उसमें मसहरियां कुर्सियां मेज सब सोने के हैं, बर्तन भी सोने के हैं, और तो और अम्मा मेरी कंघियां भी सोने की हैं, और एक और जन्नत है मेरे पास जिसमें सारा सामान चांदी का है। जन्नतें इतने गहरे सब रंग की हैं, देखने से ही आंखों में नूर और दिल में ताजगी आ जाती है। इनमें दो चश्मे भी हैं और इतने कसरत से फल हैं। अम्मा वाकई अल्लाह ताला का हर वादा सच्चा था जो आप हमें बचपन में कुरान और हदीस से बातें बताया करती थी, मुझे याद है वो, उस सब सच थी। हाँ ये जरूर है, उस वक्त समझ नहीं आती थी कि सब कैसा होगा, मगर यहां आकर आंखों से देख लिया तो अब समझ आई है कि जो कहा गया था वाकई वैसा ही था। मैंने कहा, हां बेटा ये तो तस्वुर से भी आगे की जगह है, यहां तो एक एक बाग भी इतना बड़ा है कि कोई आदमी चलता रहे 100 साल गुजर जाए और बाकी लंबाई खत्म नहीं होती। वो बोली, हां अम्मा याद आया, मुझे दुनिया में बेडिंग का कितना शौक होता था ना, तो यहां की बेडिंग देख के तो मैं हैरान हूं, अंदर रेशम और बाहर नूर, और तरह तरह की ऐसी हसीन बेडिंग है, ऐसे दिलकश नक्शो निगार है कि इंसान खो ही जाता है। कुशन कैसे करीने से सब लगे हुए, इनके कलर्स देखे, इनके डिजाइन देखे। और अम्मा सबसे बढ़कर तो ये बात जिसने मुझे बहुत खुश किया यहां, वो ये कि यहां कोई बेहुदा बात नहीं, कोई लगव बातें नहीं, कोई बुराई की बात नहीं, कोई दिल को दुख देने वाली बात नहीं। दुनिया में लोग कितना हर्ट किया करते थे। सही तो कहती है, मुझे याद आ गया, जवाद की वजह से फातिमा को बहुत बातें सुननी पड़ती थी, लोग इससे तरह तरह के सवालात करते थे क्योंकि आए दिन जवाद कोई ना कोई ऐसा काम कर देता कि जो इसको भुगतना पड़ता। एक खादिम हमारे सामने बड़े से तश्त में सागर लेकर आ गया, शराब के जाम थे और तरह तरह के फल थे। मैं उठकर बैठ गई, ये क्या है, ये तो बेर लग रहा है। मैंने एक बेर उठा के मुंह में डाला, दुनिया में तो बेर तोड़ने भी बड़े मुश्किल लगते थे, बेरी के दरख्तों में कांटे जो बहुत होते थे, यहाँ की बेरियों में तो कांटे ही नहीं। हम वहां बाजार से जो बेर लाते थे उनके जायके अच्छे नहीं होते थे। वाकई यहां पर जो कुछ भी खाया है वो दुनिया की चीजों के साथ सिर्फ नाम की मुशाबियत रखता है, वरना हकीकत में तो कोई मुकाबला ही नहीं, ये बिल्कुल फर्क है। हम जो कुछ भी खाते थे थोड़ी देर में खुशबूदार पसीना आता था और सारा खाना हजम हो जाता था। फातिमा खड़ी फल खाए जा रही थी और दूर तक देख कर कहने लगी, अम्मा याद है मेरी नजर दुनिया में कितनी कमजोर हो गई थी, इतने मोटे मोटे चश्मे लग गए थे, अब यहां मैं इतनी दूर तक देख सकती हूं कि हजारों साल के फासले तक मुझे जन्नत नजर आ रही है। मैंने कहा, हां बेटा इसीलिए तो हमें ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि दूर तक हमें नेमतें और बहारें और बागात का एक वसीओ अरीज हिस्सा नजर आ रहा है जिससे दिल और भी खुश हो जाता है। अगर नजर ही महदूद होती तो सिर्फ इतनी सी जगह देख सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने हमारी लज्जत का कितना सामान किया, कि नजरें भी इतनी तेज कर दी कि हम चीजों को देखें और उनसे लुत्फंदोज हों। और तेजी से मुंह में फल डाले जा रही थी और बातें किए जा रही थी। अम्मा, आपने नाना जान का बाला खाना देखा?
नहीं।
उफ, इस कदर हसीन है, टॉप पे है दुनिया में, जैसे पेंट हाउस हुआ करते थे। और इसका तो अंदर बाहर से और बाहर अंदर से नजर आता है, गजब का व्यू है वहां से, जबरदस्त ऊंचाई पे है और सीनिक व्यूज चारों तरफ। फिर नजरें भी जब तेज हों तो मजा और ज्यादा आता है, फिर तो आप देखते ही जाएं और दिल ही नहीं भरता। मैंने कहा, अच्छा ये उनको किस बात पे मिला? बोली, याद नहीं, नाना जान कितने तहज्जुद गुजार थे और लोगों को खाना खिलाने के तो इतने शौकीन थे, बस कोई मिल जाए सही, जबरदस्ती ही दस्तरखान पर बिठा लेते थे, किसी घर आए को खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देते थे, और हर एक को सलाम करते रहते थे। सलाम दुआ उन्होंने सबसे रखी हुई थी। फिर उनकी बातों में कितनी नरमी होती थी, इसी वजह से तो उनको ये मिला और नानों को भी मिला इसी तरह का बाला खाना। फिर वो बोली, अच्छा मैं चलती हूँ। उसने मुझे सलाम किया और बड़े नाजो अंदाज के साथ चलती चली गई। मैं उसको देखकर खुश होती गई, जब तक वो दूर नहीं हो गई मेरी नजरों से, मैं उसी को तकती रही। कितना अच्छा लगता है कि आपकी औलाद आपके सामने खुश हो। दुनिया में ये कितनी ख्वाहिश होती थी कि इनकी खुशियां देखो, इनकी कभी कोई तकलीफ ना मुझे दिखाई दे। यहाँ पे आके अल्लाह ताला ने ये ख्वाहिश पूरी कर दी कि मेरे सब बच्चे खुश हैं, मेरे बाकी बच्चे भी एक एक करके मेरे पास आके सलाम करके रुखसत होने लगे। सबकी जुबान पे एक ही बात थी, इतना मजा आया सबसे मिलके, सबने बहुत ही इंजॉय किया। मुझे खुशी हुई कि सब खुश हुए एक दूसरे के साथ मुलाकात करने पर। और ना, दुनिया में हर माँ बाप की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे सब मिलके आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, कहीं कोई भी उनके बीच में आके उनमें दूरियां ना डाल दे, कहीं इनके आपस के रिश्ते खराब ना हो जाएं। उनकी आपस में मोहब्बत, उनका आपस में मिलजुल के बैठना वालदैन को खुश कर देता, मगर अक्सर ऐसा नहीं होता था। कहीं ना कहीं एक दूसरे से नाचाकी, गलत फहमियां, फिर गिले शिकवे शुरू हो जाते और एंड में तो दिल ही आपस में दूर हो जाते थे, और बाज दफा तो बोल चाल ही बंद हो जाती थी। यहां आकर ये ख्वाहिश पूरी हो गई कि मेरे सब बच्चे मिलके बैठे, किसी ने दूसरे से मुंह नहीं मोड़ा हुआ, कोई किसी से नाराज नहीं है, सब मोहब्बत से मिले हैं और एक दूसरे से खुश हुए। मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी कर दी, वरना दुनिया में मेरे दामाद जवाद की मेरे बेटे हसन से नहीं बनती थी। कभी अली और फातिमा में कोई झगड़ा हो जाता था, आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा रहता था, और मैं तो दुआएं करती रहती थी कि या अल्लाह मेरे बाद मेरे बच्चे आपस में मिलजुल के रहें। वहां तो ये नहीं हो सका, मगर वाकई ये जगह जन्नत कहलाने के लायक है, जिसमें रूठे दिल भी आपस में मिल जाते हैं। मैं अपनी सोचों में गुम थी और दूर तक जन्नत की बहारें देख रही थी। अपनी जगह लेटे हुए भी मुझे सारे नजारे दिख रहे थे। काफी मेहमान जा चुके थे, मगर मुझे हैरत ये थी कि दुनिया में जब भी कोई दावत खत्म होती थी तो सफाई का एक काम सर पे पड़ जाता था। कहीं टिश्यू पड़े ने, कहीं खाली प्लेटें, कहीं ग्लास, कहीं सर्विंग डिशेस को समेटना, और अगर किसी दावत में छोटे बच्चे होते तब तो सारा घर ही उल्टा होता और एक पूरे दिन की सफाई का काम सामने नजर आता था। मगर यहां तो कोई गार्बेज ही नहीं, कोई कूड़ा करकट नहीं, सब का सब ऐसे साफ है जैसे कभी कोई आया ही ना हो, यहां अनटच्ड, या जैसे अभी अभी किसी ने सफाई की हो। मैं हैरान हूं, जब से मैं आई हूं कहीं कोई कूड़े का ढेर नजर नहीं आया, कहीं मैंने किसी खादिम को हाथ में थैले पकड़े हुए नहीं देखा कि वो गार्बेज जमा कर रहा हो। यहां तो लगता है कि कूड़ा होता ही नहीं है। और एक और बात ने मुझे हैरान कर दिया कि मैं जब से आई हूं इतनी जगह घूमी हूं, इतनी जगह लोगों से मिली हूं, अपने घर में भी इतनी बड़ी दावत देखी है, मगर मैं जरा भी नहीं थकी। मैं इतनी फ्रेश महसूस कर रही हूं, इतनी एनर्जेटिक। दुनिया में तो एक दावत कर लेती थी तो चार दिन मैं उठ नहीं सकती थी, और जब जवानी ढलने लगी थी तब तो हर वक्त थकी रहती थी। जब सो के सुबह को उठती तब भी थकावट ही महसूस होती थी, हिम्मत बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। और इंसान के पास चाहे दुनिया जहान की नेमतें भी हों, मगर उसकी अगर अपनी तबीयत ही अंदर से थकी हुई हो, या बेचैन हो, या बीमार हो, या बोझल हो, तो कहां कुछ भी अच्छा लगता है। यहां की खूबी यही तो है कि नेमतें भी बेशुमार और जिस्म में ताकत भी उसके मुताबिक, कि उनको एंजॉय कर सकें। तबीयत हशाश बशाश कि जी लगता है खाने में, पीने में, सैर करने में, मिलने जुलने में, वरना थका हुआ बंदा तो किसी से बात करने को भी तैयार नहीं होता। मैं अपनी सोचों में थी कि अहमद की आवाज ने मुझे चौंका दिया। भाई कहां घूमो, हमारी तरफ भी जरा देख लो। मैं हंसती, शौहर का प्यार मिल जाना, उनका मोहब्बत से बात कर लेना औरत के अंदर कितनी खुशी भर देता है। दुनिया में कभी मुझसे जोर से गुस्से हो जाया करते थे, कभी नाराज भी हो जाते थे, मगर यहां पे आके तो लगता है इनका गुस्सा सारा ही गायब हो गया। जब बात करते हैं तो बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं, फिदा होते जाते हैं, मेरे हुस्न जमाल की तो बहुत तारीफें करते हैं। जब देखते मोहब्बत से देखते, ना वो डांटे, ना वो गुस्से, ना वो झुंझुलाहट। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, कहने लगे चलो आओ सैर करने चलते हैं। मैं उनका हाथ पकड़ के उठी, उन्होंने मेरी कमर के गिर्द बाजू डाला और बड़ी मोहब्बत से मुझसे बातें करते हुए मुझे ले चले। हम नहर की तरफ गए, कितनी खूबसूरत नहर थी ये, इसमें पानी नहीं था, दूध बह रहा था। अजीब बात है, मैंने कहा मुझे हैरत होती है, ये दूध खराब नहीं होता क्या? अहमद कहने लगे ये कोई गाय भैंस का दूध थोड़ा ही है जो खराब हो जाए, ये जन्नत का दूध है। हम नहर के किनारे किनारे चलते चले जा रहे थे। अहमद कहने लगे दुनिया में तो तुम चाय ही पीती थी, दूध के करीब नहीं जाती थी, लो अब ये दूध पीकर देखो। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे दूध का एक प्याला दिया, मैंने एक घूंट भरा। वाकई ये दूध है क्या, इतना मजेदार, ये तो वैसा दूध ही नहीं जो दुनिया में मिलता था। मैंने सारा प्याला ही गटागट पी लिया। हसन मुझे शौक से पीते हुए देखकर बड़े महजूज हुए, फिर मुस्कुराते हुए बोले अभी तो तुमने लगता है तस्नीम की आमेजिश वाली शराब नहीं पी। मैंने कहा वो क्या है तस्नीम? कहने लगे वो जन्नत का एक खास चश्मा है, और उसकी खालिस शराब तो सिर्फ मुकर्रबीन को दी जाती है, हमारे लिए उसको रहीकुल मख्तूम में मिक्स करके दिया जाता है। मैंने वो मिक्स वाली शराब पी है, वो तो ऐसी है कि इंसान पी के दीवाना हो जाए। उसकी खुशबू ऐसी है, इतनी तेज कि अगर कोई अपनी उंगली उसमें डबो के निकाले तो दुनिया के तमाम जानदार उसकी खुशबू से बेखुद हो जाए, मस्त हो जाए। और तुम्हें पता है कहीं तो खादिम शराब पिला रहे हैं, और जो बुलंद दर्जे वाली हैं वो ऐसी हैं कि मेरा रब मालिक अल मुल्क खुद उनको शराब पिला रहा है। मैंने हैरत से कहा अच्छा क्या वाकई? कहने लगे, क्यों नहीं, तुमने कुरान में नहीं पढ़ा? वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। तो फिर इसमें हैरत की क्या बात, मुझे तो उनकी खुशबख्ती पे रश्क आने लगा कि रब के हाथ से शराब पीने वाले। अहमद कहने लगे, और वो जाम जिनमें शराब दी जाती है वो तो ऐसे हैं कि शीशे के हैं मगर चांदी के बने हुए। दुनिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, शीशा और चांदी दोनों एक से कैसे हो गए? हाँ ऐसे ही हैं। और ये जो कपड़े हमने पहने हुए हैं, ये भी तो देखो कैसे रोशन है। अगर सूरज के सामने ये दिखा दिए जाएं, तो सूरज की रोशनी तो ऐसे गायब हो जाएगी जैसे तारे गायब हो जाते हैं सूरज के आगे। मैंने कहा, हाँ वाकई यहाँ की तो हर नेमत ही निराली है, कभी तो लगता है ख्वाब देख रही हूँ। ऐसा तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे हम दुनिया में कि इस तरह की नेमतें होंगी यहाँ। और ये तो अल्लाह ताला का वादा ना होता कि तुम हमेशा यहाँ रहोगे, तो मैं तो डरती ही रहती कि कोई ये सब लूट के ना ले जाए, कोई चुरा ना ले जाए, कहीं खत्म ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिधर देखते थे कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे, कभी सुभान अल्लाह कहते थे। बेइख्तियार हमारे मुंह से बस यही जारी था जब से हम जन्नत में आए थे। और ये कहने में कोई मुशक्कत नहीं लगती थी, कोई मेहनत नहीं थी। जैसे सांस लेते थे दुनिया में, इसी तरह खुद ब खुद मुंह से ये कलिमात निकले जा रहे थे। और क्यों ना निकलते, हर तरफ नजारे ही ऐसे थे, जिस चीज को देखो वो ऐसी थी कि जुबान से सुभान अल्लाह निकलता था। खुद दिल चाहता कि अपने रब्बे करीम की हम्द बयान करें। हम दरख्तों के करीब से जब गुजरे तो उनकी टहनियां मुझे इतनी पसंद आई, सोने के तनों के ऊपर जो टहनियां थी हर दरख्त की मुख्तलिफ थी। किसी की टहनियां याकूत की, किसी की जुमर्रद की, किसी की मोती की, और ऊपर किस्म किस्म के खोशे और फले फल थे जो ऐसे थे गोया इन दरख्तों को सजाया गया हो इन फलों से। नीचे नहरें बह रही थी। इन दरख्तों पे लंबी लंबी गर्दनों वाले ऊंटों के बराबर परिंदे थे जो चरते चुगते फिरते थे। जब किसी का भी जी चाहेगा इनमें से कोई परिंदा खाने को, तो उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। ये इस कदर सीनिक जगह है कि एक एक मंजर को आप कई कई दिन भी खड़े देखते रहे तो जी ना भरे। अहमद कहने लगे, अच्छा चलो आओ तुम्हें एक मजे की चीज दिखाता हूं। मेरे घोड़े की सवारी करोगी? मैंने कहा, यहां घोड़ा? मुझे ये तो पता था कि अहमद को घुड़सवारी का बहुत शौक है, और दुनिया में उन्होंने एक क्लब को भी ज्वाइन किया हुआ था, मगर यहां घोड़ा? अभी मैं पूछ ही रही थी कि याकूत का बना हुआ एक हसीन घोड़ा हमारे सामने उतर कर आ गया, और उसके दो पर थे। मैं और अहमद उस पर सवार हो गए। वो घोड़ा जमीन पर नहीं चलता था, वो हमें लेकर हवाओं में उड़ गया। अहमद कहने लगे, ये जन्नत का हवाई जहाज है, और हंस दिए। मैं तो अभी तक इसकी खूबसूरती पे ही दंग थी। बोले, मुझे चूंकि घोड़ों का शौक था तो मेरे रब ने मुझे यहां घोड़े ही की सवारी अता फरमा दी। और यहां तो जिसको जिस चीज का शौक होता है उसके मुताबिक उसको चीज मिल जाती है। जानती हो, मेरी जन्नत का एक हमसाया है, वो दुनिया में देहाती था। फिर अहमद हंस के कहने लगे, पता है उसका क्या शौक था? उसको खेती बाड़ी का बड़ा शौक था कि मेरा अपना कोई खेत हो। तो वो बता रहा था कि मैंने खेत की ख्वाहिश की, उसको कहा गया कि तुम्हें सब चीजें मिल नहीं गई जिनकी तुम्हें ख्वाहिश थी? तो उसने कहा, हाँ मिल तो गई हैं, मगर मुझे खेती बाड़ी का बस बड़ा शौक है, वो मैं करना चाहता हूं। फिर अहमद कहने लगे, शायद दुनिया में उसका दिल करता हो कि मेरे पास कोई खेत हो, मगर सारी जिंदगी उसकी ये ख्वाहिश ना पूरी हो सकी। तो यहां पे फिर उसको एक जमीन दे दी गई कि इसमें बीज डालो। तो उसने बीज डाले और पलक झपकने में उस खेत में फसल भी उग गई और बढ़ भी गई और खेत तैयार होके खड़ा भी हो गया और इतना अनाज था उसमें कि पहाड़ों के बराबर अंबार लग जाए। मैंने कहा वो तो फिर बड़ा खुश होगा, उसका तो ड्रीम कम ट्रू हो गया। अहमद कहने लगे हाँ हाँ वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मैंने कहा वाकई हमें बताया गया था लहुम फीहा मा यश्ताहून, उनके लिए वो सब कुछ होगा वहां पर जिसको वो तलब करेंगे। और ऐसा ही हुआ, हम फिजाओं में उड़े जा रहे थे और जन्नत के हसीन मनाजिर दूर दूर तक हमें नजर आ रहे थे। चलें अब हम जन्नत से वापस आते हैं, अभी हम दुनिया में हैं, तो अभी हमें इस जन्नत को पाने के लिए मेहनत करनी है इंशाल्लाह। इसके लिए अल्लाह ताला से दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला हमें वहां पहुंचा देना सलामती के साथ, बगैर किसी अजाब में डाले हुए, बगैर किसी सजा को भुगते हुए हम वहां पहुंच जाए। ये मंजिल है हमारी और इसकी आरजू हम सब के दिल में होनी चाहिए। जितना ज्यादा शौक होगा इस जगह पहुंचने का, उतना ही फिर नेकी करना आसान होगा। और इस सीरीज का मकसद यही है कि वो जो हमने जन्नत के शौक भुला दिए ना, क्योंकि हम दुनिया को ही जन्नत समझ बैठे, वो शौक हमारे फिर से ताजा हो जाए। हम वाकई दुनिया में रहते हुए इसको नहीं, उस जन्नत को पाने के लिए हिर्स रखें। हमें यहां पे रहते हुए उसकी तलब हो और हमारे मतमाए नजर ये हो कि यहां पे कुछ मिले ना मिले, ये तो गुजर ही जानी है, मुझे जन्नत मिल जाए। अल्लाह ताला जन्नत की नेमतें हम सबको अता फरमाए।
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا